आर्यांश ने दीवा को उसकी बातें सुनते हुए पकड़ लिया था। दीवा ने जैसे तैसे बहाना बनाया और आर्यांश के साथ एक लंबी बहस करने के बाद अपनी केबिन में आ गई थी। केबिन के अंदर आते ही दीवा ने एक फाइल खोल रखी थी जिसके अंदर पेशेंट का डेटा था। इस वक्त दीवा के दिमाग में एक ही नाम चल रहा था और वो था सौरभ बजाज का। वो किसी भी हाल में उस आर्यांश कपूर से बचाना चाहती थी। नाम ढूंढते हुए अचानक दीवा का हाथ एक नाम पर रुक गया था जिसे देखते ही उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई थीं। दीवा चौंकते हुए कहा, अरे नहीं, ये कैसे हो सकता है? ये तो वही पेशेंट है जिसकी सुबह मैंने सर्जरी की थी। आर्यांश सारा इल्ज़ाम डॉक्टर और अटेंडिंग टीम पर लगाना चाहता है। ये सर्जरी तो मैंने की थी, तो क्या सारा एग्ज़ाम मेरे ऊपर आने वाला है? दीवा परेशानी में सर पकड़कर बैठ गई थी। तभी वहाँ एक नर्स आई। नर्स नव्या उम्र में उसी के बराबर थी। पूरे अस्पताल में अकेली नव्या थी जिसके साथ दीवा थोड़ा खुलकर बात कर पाती थी। दीवा परेशानी में वहाँ बैठी हुई थी, तभी नव्या एक खाने के बॉक्स के साथ वहाँ आई। केबिन के अंदर आते हुए नव्या ने डांटने के अंदाज में कहा, यहाँ सब जानते हैं आप एक काबिल डॉक्टर हो और आपने सर्जरी भी काफ़ी अच्छे से की है, पर इस तरह खुद की हेल्थ को अंडर एस्टिमेट करना भी सही नहीं है डॉक्टर गोयनका। आपने कुछ नहीं खाया है ना? हालांकि दीवा नव्या से हर लिहाज में सीनियर थी, पर फिर भी फ्रेंडशिप होने की वजह से वो अकेले में उससे थोड़ा कैजुअली बात कर लिया करती थी। दीवा ने नम आँखों से नव्या की तरफ देखा। उसे सच में बहुत भूख लगी थी, लेकिन आर्यांश के साथ बहस होने के बाद से वो खाना खाना जैसे भूल ही गई थी। ऊपर से जब से पता चला था कि सौरभ बजाज उन्हीं का पेशेंट है, दीवा की भूख उड़ गई थी। दीवा ने ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए उसके हाथ से बॉक्स लेते हुए कहा, थैंक यू सो मच नव्या, मुझे बहुत भूख लगी थी। बोलते हुए उसने नव्या को सामने बैठने का इशारा किया। इतना कहकर दीवा खाना खाने लगी थी। वहीं उसे खाते देखकर नव्या ने मुस्कुराकर कहा, मुझे लगा ही था हम हमेशा साथ में लंच करते हैं। आप वहाँ पर नहीं आई तो मैंने डॉक्टर अंसारी से पूछा था, उन्होंने बताया कि आपकी सर्जरी है तो मैं आपके लिए खाना लेकर आ गई। नव्या दिखने में काफ़ी क्यूट थी और उसे गॉसिप करना काफ़ी अच्छा लगता था। नव्या को अस्पताल और बाकी सारी जानकारी होती थी। ये सोचकर दीवा ने उससे पूछा, क्या तुम जानती हो ये सौरभ बजाज कौन है? दीवा का सवाल सुनकर नव्या उसे अजीब नज़रों से देखने लगी। उसने आइज़ रोल करके कहा, क्या सच में आप सौरभ बजाज को नहीं जानती? वो कपूर इंटरनेशनल्स के जनरल मैनेजर हैं। अच्छा, मैं उनके बारे में नहीं जानती थी, दीवा ने खुद को सामान्य दिखाते हुए जवाब दिया। फिर वो आगे बोली, फिर तो ये वही पेशेंट हुए ना जिसकी सुबह मैंने सर्जरी की थी? हाँ, ये वही है, नव्या बोली। फिर वो उसके बारे में आगे बताने लगी, कपूर इंटरनेशनल का CEO आर्यांश कपूर है, ये उसका मामा लगता है। ये हमारी खुशकिस्मती है जो उसे विदेश के किसी अस्पताल में ना ले जाकर यहीं पर लाया गया। उनका बैकग्राउंड काफ़ी स्ट्रांग है, आर्यांश कपूर को कौन नहीं जानता। ऐसा लग रहा था जैसे दीवा नव्या से आर्यांश के बारे में कुछ और पूछती तो वो लगातार बिना रुके कई घंटे बात कर सकती थी। वहीं उसकी बात सुनकर दीवा सकते में आ गई थी। अगर सौरभ आर्यांश का मामा था तो वो उसे मारना क्यों चाहता था? हालांकि ये बात सार्थक ने भी पहले कही थी, पर दीवा अपनी ख्यालों में इतना खोई थी कि उसने सार्थक की बातों पर ध्यान नहीं दिया। दीवा ने मन ही मन बड़बड़ाकर कहा, अजीब बात है, लोग कितने बुरे हो सकते हैं जो अपने ही मामा को मारने की कोशिश कर रहे हैं। दीवा अपने ख्यालों में खोई हुई थी, तभी नव्या ने उसका हाथ पकड़कर हिलाया जिससे दीवा का ध्यान टूटा। नव्या ने उसे कहा, क्या हुआ मैम, आप परेशान लग रही हो, सब ठीक है ना? कुछ नहीं, मैं बस मिस्टर बजाज के बारे में सोच रही थी, हमें उन्हें क्रिटिकल ICU में शिफ्ट कर देना चाहिए, दीवा ने जवाब दिया। क्या उनकी हालत इतनी खराब है कि उन्हें क्रिटिकल ICU की जरूरत पड़ रही है? नव्या ने परेशान स्वर में पूछा। क्रिटिकल ICU में अक्सर उन पेशेंट को शिफ्ट किया जाता था जिनकी हालत सर्जरी के बाद काफ़ी बिगड़ जाती थी या वो कोमा तक में पहुँच जाते थे। हाँ, वो थोड़ा लेट रिकवर कर रहे हैं, ऊपर से तुमने बताया ना कि वो आर्यांश कपूर के मामा हैं, तो हमें उनका खास ध्यान रखना चाहिए। अब इतने बड़े आदमी की तबीयत बिगड़े तो हमारे हॉस्पिटल पर बात आ सकती है, दीवा ने जवाब दिया, जिस पर नव्या ने आसानी से यकीन कर लिया था। दीवा जल्दी से खड़ी हुई और नव्या के साथ जाकर सौरभ बजाज को क्रिटिकल ICU में एडमिट करने की तैयारी करने लगी। वहीं दूसरी तरफ आर्यांश इस वक्त कपूर इंटरनेशनल में अपने केबिन में बैठकर कुछ पेपर पर साइन कर रहा था। इसी बीच सार्थक खन्ना उसके पास आया। सार्थक ने आर्यांश के सामने आकर धीमी आवाज में कहा, सर, एक बुरी खबर है, हम अपने काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हॉस्पिटल से कॉल आया था कि मिस्टर बजाज को क्रिटिकल ICU में शिफ्ट किया गया है। जनरली ICU में पेशेंट के घर वालों को मिलने की इजाज़त फिर भी मिल जाती है, लेकिन क्रिटिकल ICU में ये इम्पॉसिबल है, लगता है उनकी हालत ठीक नहीं है। अच्छा, ऐसा है क्या? आर्यांश ने बेपरवाही से कहा। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई, मानो वो समझ गया हो कि ये किसने और क्यों किया था। अपनी बात कहकर आर्यांश उठकर कमरे से बाहर जाने को हुआ, तभी सार्थक ने पीछे से कहा, सर, हमें एक मीटिंग के लिए बाहर जाना होगा, कैंसिल कर दो, क्योंकि मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, आर्यांश ने उसकी तरफ बिना देखे कहा और फिर अपनी केबिन से इस फ्लोर पर बने अपने प्राइवेट रूम में चला गया। उसने चेंज करके डस्की ब्लू कलर का कस्टम मेड सूट पहना था जो आज ही डिजाइन होकर आया था। आर्यांश इस वक्त ऐसे तैयार हो रहा था जैसे किसी डेट पर जा रहा हो। चेंज करने के बाद उसने अपने बालों को सेट किया और अपना फेवरेट महंगा परफ्यूम लगाया। उसके बाद आर्यांश हॉस्पिटल जाने के लिए निकल गया। वहीं अस्पताल में सौरभ बजाज को क्रिटिकल ICU में शिफ्ट कर दिया गया था। उसकी जांच करने के लिए दीवा उसके वार्ड में गई हुई थी। इस बीच आर्यांश वहां पर पहुंचा। वो अपने कदम सीधे क्रिटिकल आईसीयू की तरफ बढ़ा रहा था कि पीछे से नव्या दौड़ती हुई आई और उसने हाफते हुए कहा, रुक जाइए मिस्टर कपूर, आप अंदर नहीं जा सकते हैं। नव्या दौड़ते हुए आर्यांश के पास आ गई थी। उसे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसका ड्रीम मैन उसकी आंखों के सामने खड़ा है। वो उसके खूबसूरत चेहरे को गौर से देखने लगी। दीवा चेकअप करके कमरे से बाहर आई। उसकी नजरें आर्यांश से मिल गईं। दीवा को मन ही मन डर लग रहा था कि कहीं उसका झूठ पकड़ा ना जाए। उसने सौरभ को बचाने के लिए उसे जानबूझकर क्रिटिकल आईसीयू में शिफ्ट करवाया था। आर्यांश ने एक नज़र दीवा की तरफ देखा और बिना कुछ कहे अपने कदम सीधे अंदर की तरफ बढ़ाने लगा। दीवा आर्यांश से बात नहीं करना चाहती थी, फिर भी उसने पीछे से तेज आवाज में कहा, मिस्टर कपूर, आप पेशेंट के रूम में नहीं जा सकते हैं। मुश्किल से ही सही, लेकिन उसने आर्यांश को अंदर जाने से रोक लिया था। आर्यांश उसकी तरफ पलटा और बेपरवाही से बोला, मुझे मेरे मामा को देखने के लिए जाना है, आपको कोई प्रॉब्लम है डॉक्टर? आर्यांश सबके सामने ऐसे रिएक्ट कर रहा था जैसे वो दीवा को जानता ही ना हो। उसका बर्ताव हमेशा दीवा को हैरानी में डाल देता था। वो इतनी जल्दी से अपने चेहरे के एक्सप्रेशन बदल लेता था कि सामने वाला कंफ्यूज हो जाता था। यही हाल दीवा का था। आज सुबह वो सौरभ को मारने का प्लान कर रहा था तो अब उससे मिलने के लिए उसकी परवाह जताते हुए अस्पताल तक आ गया था। दीवा ने गहरी सांस ली और खुद को मजबूत करके कहा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसकी हालत क्रिटिकल है। अस्पताल के रूल्स के हिसाब से उनके फैमिली मेंबर्स भी उनसे नहीं मिल सकते हैं।
दीवा के मना करने के बाद आर्यांश उसके पास आया और कंधे उचकाते हुए बोला, अजीब बात है डॉक्टर गोयंका, रूल्स हम इंसान ही बनाते हैं, तो वो सबके लिए अलग अलग कैसे हो सकते हैं? आप उनके कमरे में जा सकती हैं और मैं नहीं जा सकता। मैं उनसे मिलकर रहूंगा, वो मेरे फैमिली मेंबर हैं और मुझे उनकी परवाह है। रही बात रूल्स फॉलो करने की, तो मैं खुद को डिसइन्फेक्ट करने के बाद ही अंदर जाऊंगा। रूल्स रूल्स ही होते हैं और हर लोगों के लिए अलग अलग ही बनाए जाते हैं। अगर आपने फिर भी मेरी बात नहीं सुनी मिस्टर कपूर, तो मैं यहाँ सिक्योरिटी बुला लूंगी, दीवा ने सख्ती से कहा। वो किसी भी हाल में आर्यांश को अंदर नहीं जाने दे सकती थी। क्या पता आर्यांश वहां मिस्टर बजाज को मारने के इरादे से आया हो। नव्या हैरानी से दीवा और आर्यांश की तरफ देख रही थी, जो दोनों एक दूसरे के बिल्कुल करीब खड़े हुए थे और एक दूसरे को खा जाने वाली नज़रों से देख रहे थे। आर्यांश कपूर कौन था ये सब जानते थे और कोई उसे रोकने की हिम्मत नहीं रखता था। सब जानने के बावजूद भी दीवा आर्यांश को अंदर जाने से रोक रही थी, बगैर सोचे कि उसका अंजाम क्या हो सकता है।